नारायण। भगवान की अचिंत्य माया की चर्चा हो रही है और हम लोगों ने उस दिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखा था कि जो आज हम लोग वर्णन सुनेंगे वो अवैज्ञानिक नहीं है, कपोल कल्पित नहीं है, उसके कहने का ढंग अलग है बस। तो पहले बताया कि सृष्टि कैसे हुई, फिर वो परमात्मा उसके अंदर प्रविष्ट हो गया, उस परमात्मा ने अपने आप को देह मान लिया, अपने आप को इंद्रियां मान लिया, कर्ता भोक्ता मान लिया। जब कर्ता भोक्ता मान लिया तो फिर संकल्प के साथ कर्म करने शुरू किए। संकल्प के साथ कर्म शुरू करने का फल ये हुआ कि उन संस्कारों के कारण उसको और नए नए जन्म मिलने लग गए। तो इसी तरह से एक कर्म का फल दूसरा फल कर्म, दूसरे कर्म का फल दूसरा कर्म, इसी तरह से ये चलता रहता नाटक। इत्थम कर्म गतिर गच्छन बहवा भद्र वहा हुआ। इस प्रकार अच्छी और बुरी अनेक प्रकार की गतियों में जाता हुआ अंत में आभू संप्रवा सर्ग प्रलय वष्णुते वशः। अंत में प्रलय का समय आ जाता है और प्रलय का समय आने पर अवशः माने बिना किसी जोर के मजबूरी में मजबूर, हाँ मजबूर ठीक है, और क्या बढ़िया शब्द होगा अवशः, मजबूर हो गई ठीक है। अवशः माने अपने हाथ में जिसके कुछ नहीं, वो अवशः कहलाता है। कि जैसे तब अगर स्टेयरिंग बंद हो गया तो अब हम अवशः हो गए गाड़ी को चला, ओह लाचार, करेक्ट वर्ड लाचार, परवश भाई लाचार हो जाता है, माने कि उसको अंत में प्रलय को प्राप्त करना पड़ता है। धातु पप्लव आसन्य व्यक्तम द्रव्य गुणात्मकम अनाद निधना कालो है व्यक्ताप है व्यक्तायाप कर्षति। जब धातु पप्लव आ जाता है, धातु पप्लव माने धातुओं के अलग अलग होने का, डिकम्पोज कहो होने का जब मौका आ जाता है तब द्रव्य गुण इन सब रूप में वो सबके सब अलग अलग हो जाते हैं और इनको अनाद निधना, अनाद निधना माने जिसका न कोई आदि है न जिसका कोई अंत है। ऐसा काल, ये काल जो है, अब अनाद निधन तो संसार में केवल एक परमात्मा है। यहां काल के लिए भी कहा गया तो यहां काल का मतलब महाकाल है, परमात्मा का कालोस्म लोकक्षयकृत प्रबद्ध हो, ये जो उसमें आया है गीता में वही समझ लो। अनाद निधन कालो, अनाद जमाने जिसका कभी कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा काल जो है इसको अपने आप में खींच लेता है। ये भगवान की माया है। तो कैसे खींचता वो विधि बता रहे हैं। अब ये केवल हम सुना देते, इसमें कोई बहुत व्याख्या करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ग्रंथ है इसलिए इसको श्रवण करा देते हैं। कैसे संसार का विघटन होता है तो कहते हैं शतवर्षा है ना वृष्टि भविष्य तुलबणा भुवि तत्कालोपचितोष्णार्को लोकांसीन प्रतिपिष्यति पाताल तलमारभ्य संकर्षण मुखानल दहन्ध्वाशिको विश्व वर्धते वायुनेरिता। पहले तो लिखा कि 100 वर्ष तक वर्षा ही नहीं होगी, अकाल पड़ेगा। 100 वर्ष तक वर्षा न होए तो कैसा बढ़िया अकाल पड़ेगा, वो तो समझ में ही नहीं आते। यहां 1 या 2 वर्ष के अकाल में आफत आ जाती, 10-10, 12-12 वर्ष के अकालों का वर्णन तो उपनिषद इत्यादि में भी आया है। 100 जब सर्ग का लय करना है तो 100 वर्ष का अकाल पड़ता है। फिर तत्कालोपचितोष नारको लोकांसीन प्रतिपश्यति। उस समय सूर्य भगवान बहुत तेज हो जाएंगे, और तीनों लोगों को तपाएंगे। साइंस के विद्यार्थी जानते हैं एक समय आने पर सूर्य फैलेगा, जितना अब है उससे कई गुना बड़ा हो जाएगा। जब सूर्य कई गुना बड़ा हो जाएगा तो वो धरती के बहुत नजदीक आ जाएगा और इतना अधिक ताप देगा कि जय श्री कृष्ण हो जाएगा। ये हमारे साइंस के हिसाब से भी स्वीकार किया जाता है कि सूर्य बढ़ेगा। तो अब उसी को सूर्य के बढ़ने के कारण मानो कि इतना तेज होगा कि तीनों लोगों को वो जलासा देगा। पाताल तल मारभ्या संकर्षण मुखानला दहनूर्ज सिखो विश्वक वर्ग पे वायु। सामान्य लोगों के लिए बताया गया है कि पाताल नीचे के सात लोग, ऊपर के सात लोग, तो नीचे का जो सबसे नीचे का ताल है जिसको पाताल कहते हैं, वहां भगवान संकर्षण, संकर्षण शेषनाग, शेषनाग के मुख से अग्नि निकलेगी। अब इसको आप अगर मानो कि वहां शेषनाग है ही नहीं, अग्नि वहां से कहां निकलेगी, तो आप इसको उसी तरह से समझ लो कि जब नीचे से सूर्य का ताप ऊपर की ओर आएगा, इस तरह से मान लो। संकर्षण माने जो सबको अपनी ओर खींचता है, तो सबके प्राणों को खींचना ही है। तो दहनूर्ध शिखो विश्वक वर्धते वायु निरीता, तो वो ऊपर चलता है, लपटें ऊपर ही ऊपर बढ़ती हैं, और वायु नेरिता माने वायु के द्वारा उनको और प्रबल कर दिया जाता है, और उसके कारण वो ऊपर ऊपर के सब लोगों को जला देता है। तो जब जल के खाक हो गया तब बहाना भी तो है ना, जैसे वो शरीर को जलाने के बाद और उसको फिर पानी से बहाया जाता है, तो साम वर्त को मेघो वर्षत इसमें शतम समा धारा भीर हस्त भीर हस्ता धारा भीर हस्त भी हस्तार भिलियते सरिले विराट। 100 वर्ष तक फिर वर्षा होती है। अब जब इतना गर्मी से सब अपकर्षण हुआ तो उसके बाद अधिक गर्मी के बाद वर्षा होती ही है। तो सांवर्तक नाम के, सांवर्तक माने प्रलयकालीन मेघ, प्रलयकालीन मेघ 100 वर्ष तक वर्षत इसमें शतम समाह 100 वर्षों तक वर्षा करेंगे। बंबई में 2 दिन की वर्षा हो जाती है तो कई लोग तो जय श्री कृष्ण भी होगा कार में बैठे बैठे 100 वर्षों तक, और यहां तो धारा से बरसता है। और मैंने कहा धारा भी हस्त भी हस्ता, जैसे हाथी का हाथ, हाथ माने सूंड, हाथी सब कुछ अपने सूंड से करता ना, इसलिए उसको सूंड को हस्ती हस्त कहते हैं। तो धारा कैसे, जैसे हाथी अपने सूंड से धारा डालता है, इस तरह की मोटी मोटी धाराएं बरसेंगी, माने छोटी मोटी बूंदों की वर्षा नहीं है, सूंड की तरह वर्षा होगी और संपूर्ण चराचर को वो पानी से भर देगा। ततो विराजम उस ज वैराज पुरुषो अनुपम, जो वैराज्य पुरुष है हिरण्यगर्भ कहो, जैसे हम लोगों का सृजन होता वैसे वैराज पुरुष का भी सृजन होता है। वो भी इस समष्टि का जो प्रारब्ध है उससे मिलके उसका शरीर बनता है। ततो विराजम उत्सज्य वैराजा पुरुषो नपः, विराज पुरुष जो है वो अपने आप का संवरण कर लेता है और अव्यक्तम विशते, अव्यक्त प्रकृति में विशते माने प्रवेश कर लेता है। सूक्ष्म निरंधन इवानला, जैसे ईंधन खत्म हो जाए तो अग्नि अपने आप बुझ जाती है, उसी तरह वो भी बुझ करके शांत। उसकी शांत होने की विधि क्या है तो वो भी बता रहे हैं, जैसे जैसे सर्ग हुआ था वैसे वैसे विसर्ग होगा। वायुनाहृत गंधाभू सलिलत्वाय कल्पते, ये संस्कार डाल लो और बाकी इसमें कोई बहुत व्याख्या करने वाली चीज नहीं। वायुना हरित गंधा, वायु का स्वभाव है गंध को, गंध का और रस का आहरण करता है। जैसे वहां उस कोने में कोई इत्र लगावे तो यहां तक खुशबू आ जाएगी, तो ये वायु का स्वभाव है। इसी प्रकार कपड़ा गीला करके फैला दो तो वायु उसमें से रस जल लेकर के सुखा देगी। ये तो वायु का स्वभाव है। ये फोटो रहने दो, सबका ध्यान उधर जा रहा है। गिरीश भाई तीन बार देखे, फिर हमने कहा वो नहीं कहते, चलो मैं ही कह देता हूं। मर जा गिरीश भाई, धीरे से कह देंगे। तो वायुना हृद गंधा भू, धरती का गुण। अब सभी तत्वों के गुणों का अपकर्षण होएगा। जितने जितने तत्व हैं उन सबके गुण अलग अलग हैं। तो तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का स्वभाव है गंध। ये गंध और किसी में नहीं है। आपको वायु में गंध होती तो वो पृथ्वी से ली हुई गंध है। तो वायुना हृत गंधापू सलिलत्वाय कल्पते, जैसे ही धरती से गंध का अपहरण होता है वैसे वो अपना ठोस रूप छोड़ करके सलिलत्वाय कल्पते माने पानी बन जाती है, पृथ्वी जल में लीन हो गई, ये कहना है। सलिलं तद्ध तरसम ज्योतिष्ठ्वायोपकल्पते। अब वायु ने फिर जल का सलिल का रस खींच लिया। देखो यहां एक चीज हम लोग ध्यान दे ले कि पांच तत्व हैं ये हम लोगों ने कहा, तो आजकल के साइंटिस्ट कहते हैं ये गलत है, तत्व तो पांच नहीं है, तत्व तो हंड्रेड समथिंग है, 108 और समथिंग, सॉरी 117 हाँ 117 तत्व तो है। ये ऋषियों कल्पना गलत है, हम उनकी बात का विरोध क्यों करें? उनके यहां तत्व की परिभाषा अलग है, वो एलिमेंट्स को तत्व कहते हैं और हम इन विकारों को तत्व कहते हैं। जैसे जितने भी सॉलिड हैं संसार में सबके सब सॉलिड को हमने पृथ्वी कह दिया, पृथ्वी तत्व है। अब इसको तुम न समझो और हमको गलत कहो तो आपकी बुद्धिमानी है, और क्या कहें, यू आर इंटेलिजेंट, रादर मोर इंटेलिजेंट। बाकी एनीथिंग सॉलिड इज पृथ्वी, एनीथिंग सॉलिड, एनीथिंग लिक्विड इज सलिल। हमारी परिभाषा है जो पानी की तरह लिक्विड है, द्रव द्रवित है, द्रवित हो सकता है, द्रवित माने जो ऐसे ऐसे अपने आप फैल सकता है, वो उसको हमने जल कह दिया। अब हम इतने बेवकूफ थोड़ना है कि घी में और पानी में भेद नहीं जानते हैं, घी का भेद अलग है। अब घी से तो गांठिया नहीं तला जा सकता है, माने पानी से गांठिया नहीं तला जाता, घी से तला जाता है, हमको मालूम है। मीठा लौला बनाना है तो उसके लिए घी चाहिए, पानी से नहीं चलेगा, वो कड़ा हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो लिक्विड है इसलिए हमने उसको जल के रूप में कह दिया। तो एनीथिंग लिक्विड इज जलीय तत्व, एनीथिंग गैशियस इज वायु। ऑक्सीजन हो कि चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, कुछ भी हो, इट इज वायु। जो बह उड़ के बह सके वायु। एनीथिंग एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज तेज। तेज को तुम किसी रूप में बदलो, तेज से आप चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लो, साउंड पैदा कर लो, लाइट पैदा कर लो, जितनी भी चीजें हैं एनर्जी एनर्जी, वो सब की सब हमने तेज में कह दिया। इन सब से रहित जो हो, न पृथ्वी है, न सॉलिड है, न लिक्विड है, न एयर है, वो सब का सब हमारे आकाश में है। आकाश माने जिसमें अवकाश मिल सके जिसमें हम चीजों को हिला सकें सुविधा से। जल में अगर कुछ डालेंगे तो कुछ हटाना पड़ेगा, सॉलिड में भी यही हालत है, तेज में भी, लेकिन आकाश में कुछ उसको, जहां अवकाश का नाम आकाश है। आपने हमने उस दिन बहुत डिटेल में बातचीत की थी कि पहले एकदम एनर्जी के रूप में हुआ, एनर्जी से फिर वायु गैसेस हुआ, गैसेस बाद लिक्विफाई हुआ, लिक्विफाई सॉलिडिफाई हुआ, ये हम लोगों ने सोचा था सुना था ना, अब वही उल्टा हो रहा है। सॉलिड इज चेंज इनटू लिक्विड, उसका गंध ले लिया तो लिक्विड हो गया, उस लिक्विड का सलिलम तदृशम ज्योतिष्वायोपकल्पते, जैसे ही उसके रस का अपकर्षण कर लेंगे, रस माने सरफेस टेंशन समझ लो, जिसके द्वारा वो एक दूसरे को चिपकाए रहता है, वो अगर खत्म कर अलग अलग हो गया तो उसके बाद जल जो है वो एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ज्योतिष, ज्योतिष माने प्रकाश तत्व में, पृथ्वी अब तेजो वायु, पृथ्वी अब तेजो, तेज में बदल गया, ज्योतिष माने तेजो बदल गया। हरत रूपम तो तमसा वायु ज्योति प्रलीयते, जब वायु का रूप ग्रहण कर लिया संस्पर्शात्मक जो उसका गुण है, उसका हरण तमसा, तमसा माने सांवर्तक तमस, ये जो प्रलयकालीन तम है उसके द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है, तो वायु तेज में बदल जा गया। हृतस्पर्शोवकाशे न वायु नभस लिए थे, तेज का वायु आया थी तो हृत रूपम तो तमसा वायो ज्योति प्रलीयते, वायु माने वायु में तेज लय को प्राप्त हो जाता है, माने पृथ्वी बदली जल में, जल बदला तेज में, तेज बदला वायु में। हृतस्पर्शोवकाशे न वायुर्नभसी लीयते, जब स्पर्श गुण जो है वायु का उसको अपकर्षण कर लिया गया जो उसका गुण है, तो वायु नभ से लिए थे, वायु नभ में माने आकाश में लय को प्राप्त हो जाए। कालात्मना हदगुणम नभा आत्मनि लीयते, कालात्मा के द्वारा जो आकाश का गुण है शब्द, शब्द गुणकम आकाशम, तो कालात्मा हृदगुणम, हृदगुणम माने शब्द गुण का जिसका अपहरण कर लिया, वो आत्मनि लीयते, वो आत्मा में लय को प्राप्त हो जाता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि सह वैकारिकै नृपः प्रवेशन्ति अहंकारं स्वगुणैरहमात्मनि, ये इंद्रियां जो हैं वो अहंकार में प्रलित लय हो जाती है। तीन प्रकार के सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार है, तो जितने सॉलिड हैं ये सब के सब तामस में जाते हैं, इंद्रिया इत्यादि राजस में जाती हैं, मन और बुद्धि सात्विक अहंकार में ली जाती है। इस तरह से अभी जो कथा सुनाई गई थी सृष्टि की, उसकी अब प्रलय की कथा सुनाती है। एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यंतकारिणी, ये भगवान की माया है, ये जो एषा माया भगवता है ना, जितने श्लोक सुनाए हैं उन सब के साथ इसको जोड़ लेना। वायुना हर गंधा भूषलित्वाय कल्पते, एषा भगवता, एषा माया भगवता, सलिलम तदृशम ज्योतिष त्वायोपकल्पते, एषा माया भगवता। तो ये जितना वर्णन किया गया है ये सब का सब भगवान की माया है। शुरू किया था जैसे, उसी तरह से अंत कर दिया। ईशा माया भगवता सर्ग स्थित्यंत कारिणी। ये भगवान की माया है जो सर्ग माने सृजन करती, सृजति स्थिति स्थित करती है और अंत करती है। त्रिवर्णा वर्णिता अस्माभिः, ये तीन प्रकार की माया अस्माभिः माने अपने लिए बहुवचन का प्रयोग किया है। ये हमने तुमको माया का रूप बता दिया, अब तुम बताओ इसके अलावा और क्या सुनना चाहते हो। वर्णिता त्रिवर्णा वर्णितास्मा भी किम भूया शोध, हे राजन अब तुम ये हमको बताओ कि तुम अब और क्या सुनना चाहते हो। अच्छा, हम लोग आगे श्लोकों में प्रवेश करें राजा कुछ बोले इसके पहले थोड़ा हम लोग विचार कर लें कि जब माया का इसी प्रकार से खंडन ही करना था तो इसका वर्णन का इतना प्रयास क्यों किया गया। कहीं पर भी किसी शास्त्र का माया के वर्णन में तात्पर्य नहीं है, इसको आप लोग मान लो। उनका तो एक ही तात्पर्य सर्वेषां वेदांत वाक्यानाम, क्या है वेदांत के विद्यार्थियों ले, बहुत प्रसिद्ध चीज है, ध्यान रखना चाहिए। सर्वेषां वेदांत वाक्यानाम अद्वैत ब्रह्मणि एव तात्पर्यम, ये प्रसिद्ध बात है, मालूम है तो कैसे भूल गई। ये जहां भी हम वर्णन कर रहे हैं, हम माने शास्त्र की बात कर रहे हैं, वहां पर तात्पर्य केवल परमात्मा के वर्णन में है। अब यहां पर है तो माया का वर्णन, माया सर्ग स्थिति का, लेकिन वहां पर राजा कह रहे हैं आपके मुख से कही हुई हरि की कथा रूपी अमृत को सुनते हुए हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वर्णन हो रहा है माया का और हम कह रहे हैं ये हरि कथा हो रही है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, और फिर हम ये कह रहे हैं कि हम हरि कथा कह रहे हैं, तो वस्तुतः ये हरि कथा ही है। हरि कथा को हम अपने हृदय में कैसे बैठा पाएं इसके लिए अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण हम में ये जो शरीर बुद्धि हो गई है, इंद्रिय बुद्धि हो गई है, मनोबुद्धि हो गई है, ये हमारे बंधन का कारण है। ये है नहीं। एक बार परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी का जब अंतिम वाला नाटक हुआ था और यहां प्रेमपुरी में सभा हुई थी, तो हमने एक दृष्टांत सुनाया था। काशी का, बनारस का, हम जब काशी में रहते थे तो हमारी एक आदत थी, यानी गंगा जी से हमारा बहुत प्रेम रहा, गंगा, हिमालय, पर्वत, समुद्र, पता नहीं इनके प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण क्यों है। तो काशी में थे तो हम सवेरे गंगा स्नान करके, जब विश्वनाथ खंड में रहते तो विश्वनाथ का अभिषेक करते थे, जब केदार खंड में चले गए तो केदारनाथ का अभिषेक करते थे। रोज सवेरे गंगा नहाने जाना, कमंडल में जल लेना और भगवान का अभिषेक करना, लौट के आना, दिन भर अपना पढ़ते लिखते थे, हम थे नहीं, बहुत आलसी आदमी थे हम, शुरू से बड़े आलसी, लेकिन चलो काशीवास करना था तो मौज मारते थे हम। उसी मौज में ही दो चार शब्द घुस गए दिमाग में जो आप लोगों को सुनाता हूं, वरना परिश्रम किया होता तो न जाने क्या होता, बड़ी मौज मारते। तो दिन भर मौज मारी, खाया पिया और शाम को फिर नाव लेकर के हमको नाव चलानी आती है। आई कैन रो वेरी वेल, कंपटीशन ले सकता हूं रोइंग का। तो शाम को हम नौका अपने आप चला के, नौका एक हमारी रिजर्व रहती थी और उस पार जाया करते, तो उस पार थोड़ा घूमते टहलते थे, मौज मारते थे। मैंने बताया काशी मौज मारने के लिए तो गए, अरे बाबा जी ही मौज मारने के लिए बने। हमारे गुरु भाई से हम कहा करते थे कि आप लोग तपस्या करो, तो आप लोग तपस्या के, हम तो मौज मारने के बाबा जी बने, हम तो मौज मारेंगे। मौज मार रहे तो देखते हो अभी भी मौज मारते हैं। हमारी जैसी मौज भगवान सबको दे, क्या मौज। तो मौज मारते थे, तो उस पार गए, मौज मारे, फिर वहां से नौका लेकर के आया, फिर शाम को खाया पिया सो गए, बस और कुछ नहीं। भजन वजन चलो थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, नहीं तो। तो हमारा नियम सवेरे गंगा जी और शाम को फिर गंगा जी। एक दिन की घटना सुनाते हैं। अभी भी शायद काशी में होगा, पहले काशी में कुछ घाटों की मर्यादाएं थी। जैसे काशी में त्रिपुरा भैरवी घाट है, वो केवल पंडितों के लिए रिजर्व, वहां केवल पंडित लोग विद्वान लोग जाएंगे और दूसरे लोग वहां कोई जाएगा ही नहीं डर के मारे। और वहां सवेरे सवेरे शास्त्र के ऊपर चर्चा होती है, विद्वान बड़े बढ़िया बढ़िया, फिर प्रश्न उत्तर होते रहते हैं, फिर नहा नहा के वो लोग अपने अपने चले जाते हैं। वो एक तरह से पंडितों के लिए रिजर्व है। इसी तरह से ये जो स्नान करके और संध्या वंदन करने वाले, इनमें केदार घाट वाले लोग जाते, वो बैठ करके वहां करते थे। उसके बगल में धोबी घाट है, वहां केवल धोबी कपड़े धोएंगे। इसमें अगर कोई धोबी कपड़ा धोता होता तो लोग डांट देते, ए कागज हुआ चलाइए। तो ये वहां की बड़ी मीठी भाषा है। तो केदार घाट पे मान ये संत लोग और ये संध्या करने वाले अच्छे पेपर वगैरह ये सब, हम केदार घाट पे जाते थे नहाने, बगल में धोबी घाट। तो हम नहा करके कमंडल ऐसे ले करके ऊपर चल रहे थे, तो देखा एक धोबी गधे के कान पकड़ करके खड़ा हुआ है। अब हम विज्ञान के विद्यार्थी क्यूरियस, ये कान पकड़ के गधे के क्यों खड़ा हुआ है, क्या हेतु है, कोई ना कोई रीजन है। तो जब तक हमको समझ में आवे पूछे, हम मौन रहते थे सवेरे। तो ऊपर से एक दंडी स्वामी उधर से निकले। काशी में मठ और घर अब नजदीक, पहले तो सब काशी में मठ ही थे, मठ या विद्वान रहते थे। गृहस्थ लोग प्रायः 80 के इधर रहा करते थे कि काशी में रह के कहीं कोई पाप वाप न हो जाए, तो व्याकार करेगा, बाकी मठ या विद्वान लोग रहा करते थे बस। अब तो सब साथ साथ रहते, मठ ही बिक गए सब, मंदिरों में भी दुकानें खुलने लग गई हैं, चलो तरक्की हो रही है। तो आपस में मठ वालों का पड़ोसी से प्रेम भी रहता है। तो वहां ऊपर से वो दंडी स्वामी उस धोबी से पूछते हैं, अरे का हो धोबिया, ये गदहवा के कान पकड़ ला कहा ठाल बड़ा, कपड़वा ना धोवाई का। ये वहां की भाषा में, अरे धोबी भाई, भाई तो नहीं कहा धोबिया कहा, लेकिन अब अहिया तो भाई कहूं पर से, तो ए भाई ये कपड़ा नहीं धुलेगा क्या आज, ये गधा के कान पकड़े क्यों खड़े हो फालतू टाइम। तो दंडी स्वामी ने जब पूछा तो धोबी ने अपनी प्रॉब्लम बताई, अरे सरकार का कोई आज गधावा का सननवा भुला गईली हो, और इस घोड़वा गधावा के का करी, कहूं भाग जाए तो कपड़वा कैसे जाए, ये सोचा था ही। माने गधे की पीछे की टांग बांधने के लिए इतना बड़ा एक मोटा रस्सी होता है, रस्सी का टुकड़ा होता है, कपड़े पर लपेट बांध ले या रस्सी बांध ले, उसके दोनों पैर बांध देते हैं तो गधा वहीं अखटपट खुटपुट खुटपुट करता जाता नहीं है, दो भी कपड़े धोता है पीट पीट करके, फिर सुखाता है, सुखा के लपेटता है, और शाम को फिर मोटरी छोटी गठरी को गठरी कहते हैं और कपड़ा फूल बड़ा जैसे को मोटरी कहते हैं। ये मोटरी पारिभाषिक शब्द है, मोटरिया लिया मोटर की कार वाली मोटरी, मोटरी मोटरी माने मोट गठरी, मोट माने बड़ी गठरी। वो तो मोटरी बनाएगा, गधे के ऊपर लादेगा, फिर इसका करेगा और फिर टिक 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 करके ले जाएगा, जब चढ़ेगा तो ऊपर भी उसका मन हुआ तो ऊपर से खुद ही बैठ जाता गधे के ऊपर, गधा मजबूत है अपना ले जाता है धीरे धीरे कटपट 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 कटपट। ये प्रोसेस है। तो सरकार आज गधवा का सनमा भुला गई हो, गधे का सनना माने पीछे का पैर बांधने वाला रस्सी का टुकड़ा भूल गया हूं। गधावा चल जाई तो फिर हम कपड़वा कैसे लेके जा, हम कपड़ा लेके कैसे जाएंगे। तो दंडी स्वामी तो विद्वान थे, वेदांती, उनको मालूम था कि ये संस्कार कितने दृढ़ होते हैं। तुमका सुना हो धुविया, जहां एक रोज बांधा लाना वहां ले जा, और झूठ मूठ ऐसे कह दे और वह के टांग का थोड़ा इसे घुमा दिया, बस द्वार का दहवा कतो न जाए। उन्होंने युक्ति बताई गधे को बांधने के लिए, रस्सी ने कोई चिंता नहीं, जहां इसको रोज बांधते थे वहां ले जाओ और ऐसी झूठ मूठ इसके चारों तरफ पैर कर देना जैसे रस्सी बांध रहे हैं, और रस्सी बांधने करके थोड़ा पैर को ऐसे कर देना, बस तुम देखो कि गधा वहीं वहीं खड़ा। खतो न जाए सरकार। अरे खतो न जाए तो देखा ना, हम फाड़ तो भाई माने हाँ, कहीं नहीं जाएगा सरकार, कहीं नहीं जाएगा, हम खड़े तो हैं, देख लो हमारी परीक्षा कर लो, संतों के पास तो लगा सौदा था, परीक्षा कर लो। तो धोबी ने किया ऐसे ऐसे करके किया और ऐसे करके गधा थोड़े ऐसे किया नाक फुट, लेकिन तीन टांगे तो हिलाता है और वो टांग जिसमें रस्सी बंधी हुई है ऐसा किया गया, वो टांग नहीं हिलाता है। धोबी ने कहा अरे बड़ा सिद्ध साधु बा हो, गधावा का हुआ था ठार ठार और टांग बांध दे, अरे वही से खड़े खड़े उन्होंने टांग बांध दी। खुश हो गया धोबी। अब साल भर तक बाबा के कपड़वा फ्री धोवाई, माने फ्री माने फ्री, साल भर तक बाबा कपड़े फ्री धोएंगे, आज हमारा इतना बड़ा काम कर दिया। धोबी ने खैर अब लंबा चौड़ा क्या करें, कपड़ा धोए, कपड़ा धो करके सुखाए, सुखा करके फिर मोटरी उटरी बांधी, ये सब दिन भर की प्रोसेस रही होगी और हम तो अपना आराम करने चले गए थे। लौट के शाम को हम आए तो यह दृश्य बदला हुआ है, धोबी का मूड खराब, भयंकर मूड खराब। हुआ ये कि उसने गठरी वठरी मटरी बांध करके गधे के ऊपर लाद दी, अब गधों को हांकता गधा हिल ही नहीं रहा है। 1200 रुपए का गधा था, अभी लेके आया था, 1200 बड़ा महंगा है भाई, मानी अब नहीं, अब उस समय की बात 1200 70s की बात है, जब 2 लाख में तो यहां फ्लैट मिल जाता था, 2 लाख बड़े आराम से फ्लैट मिलता था 70s में, ये तो उसके बाद ही अग्नि तप्त हुई है। तो 1200 का अब बिगड़ रहा है, ये देखा बाबा जी अपना संडासी भैले हैं, संडासी मैंने संडासी भी संडासी वो गुस्से में हमार गधावा खराब कह दे रहे, वो गधे को मार रहा हो, गधा हिल ही नहीं रहा है, तीन टांगे हिलाता एक टांग वही बंदी को मार रहा हो, फिर गधे को बोलना नहीं आता था, नहीं तो बोल देता, अब गधा बोल नहीं पा रहा और धोबी समझ नहीं रहा है, उसको मार पड़ रही है। तब तक उधर से दंडी स्वामी फिर दिखाई पड़ गए, तो अब यही झल्ला था, अरे हे बाबा जी, हे बाबा जी, कहा भाई धोबिया, अरे हमार गधावा नाश कही दहला, हमारे गधे का नाश कर दिया ना, अब प्रसन्न भैला, अरे क्या हुआ भैया, कहा भाई, अरे कहा भाई, इस गधावा चलता ही नहीं, खे गधा चल ही नहीं रहा है। तो दंडी स्वामी पूछते हैं कि तुमने इसकी रस्सी खोली क्या, कहन बाबा जी तो हाथ और दिमाग खराब बटले बा, तू हमारा दिमाग खराब करवा। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब है ही, अब तुम हमारा भी दिमाग खराब करोगे का भाई? अरे वो क्या बदली कब हो, माने हमने इसको बांधा कब है जो के खोली? अरे धविया जैसे वो करे झूठ बूट बदला है ना, वैसे ही झूठ बूट वो के खोल दा। दो मिनट अच्छा देखा था या बहन, और नहीं तो रहा फिर हम तो के बतावे जब बड़े भारी संडासी भैला। तो धोबी ने जैसे ही ऐसे करके झूठ मूठ उसको घुमाया, और वैसे ही गधे को मार तो बहुत पड़ी थी, सर्प धड़ करके भाग गया धोबी। अरे वाह वाह, अरे बाबा जी तू तो बड़ा सिद्ध बड़ा हो, झूठ मूठ बांध देना, अब झूठ मूठ खोल देना। धोबिया खुश हो गया। कैसे कहूं, वही गधे वाली दशा। आप लोग तो समझदार है, सबके सब प्रेमपुरी के सत्संगी है, ठीक है, हम अपनी बात कह रहे हैं। आप लोग कह रहे हिम्मत करें, इतने पुराने सत्संगी बताओ, राम राम प्रातः का सन्नो मित्रा सब वरुणा का पाठ करने वाले है, सबको मालूम है लेकिन फिर भी क्या दशा होती। सारा ज्ञान ध्यान जब मौका आता है तो इसके लिए सत्संग चाहिए, विवेक चाहिए। आप लोग गौर करो अपनी हिस्ट्री को, अब से 10 साल पहले की प्रॉब्लम को आप सोचो, जिसकी चिंता के मारे उस समय आपको नींद नहीं आ रही थी, मरे जा रहे थे, आज उस प्रॉब्लम की क्या कीमत है? कुछ भी नहीं। हमारी अपनी प्रीक्रिएटेड प्रॉब्लम, हम परेशान हो रहे थे। स्कूल में परीक्षा पास करने के लिए, सातवें आठवें दर्जे की परीक्षा पास करने के लिए कि हम टॉप आ जाएं, फर्स्ट आ जाएं, सेकंड आ जाएं, थर्ड आ जाएं, कितने मर मर करके खप खप करके करते थे। कुछ लोग तो दूसरे उपाय भी करते थे, कितने नींद नहीं आ रही, भोजन नहीं कर पा रहे हैं, अरे टेंशन के मारे वो डिसेंट्री हो जाती थी। उसको कौन सी डिसेंट्री कहते हैं, इमोशनल, इसमें इमोशनल डायरिया, वो हो जाता रहा। अच्छा बताओ आठवें दर्जे में तुमने टॉप किया, उसका क्या फल मिला है? कोई बात बड़े जा रहे। तो इसी तरह से हमारी छोटे बच्चे छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करते हैं, कभी प्लास्टिक का बटन ले आए, कभी ये आजकल तो शायद न करते हो, आजकल तो फुर्सत ही कहां, उसी से समासे से ही फुर्सत नहीं मिलती है। हर लोग जब छे तो कुछ चीजें इकट्ठा करते, कोई चीज मिल गई इकट्ठा कर लिया, ये 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 ये। अब अगर उसको कोई ले ले तो देखो कैसा फिर महाभारत मचता था। तो हम लोगों ने अपना बंधन स्वयं क्रिएट किया है। वो हमारे एक थे, ये शायद हमने नहीं अभी नहीं सुनाई है, सुनाई अभी थोड़ी देर पहले, हमको भूल ही गया, जरा याद नहीं रहता है। उनके घर में आग लग गई थी तो अच्छा एक हमारे थे परिचित, उन्होंने बड़ा अच्छा भवन बनवाया था, हमने ग्रीन रंग का स्टोन सबसे पहले उनके घर में ही देखा था। ये ग्रीन वाला जो आता स्टोन तो कॉमन हो गया, उसमें बड़ा अनकॉमन था। तो हमने पूछा वाह 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 वाह, तो हमको बड़ा बड़ा, तो हम गए थे, खैर समय बीत रहा है, तो हमने उनका घर का देखा, बन गया, बड़ा खुश हुए, और ये वो बड़े महाराज। कुछ परिस्थिति पड़ी, अप डाउन, संसार का काम ही है, क्या है, कालक्रमेण जगता परिवर्तमाना चक्रारि पंक्ति रेव गच्छति भाग्य पंक्ति। जैसे रथ का चक्र ऊपर नीचे घूमता है, वैसे भाग्य पंक्ति भी ऊपर नीचे घूमती है। अभी हमको भरत भाई परसों बता रहे थे, परसों नहीं चार पांच दिन हुए, हम जब नहाने गए थे समुद्र में आप थे तो हमको बताइए ये नाम लेके बताने में कोई पाप तो नहीं है, ये पाप तो नहीं है, सबको मालूम तो है। ये शिपिंग कारपोरेशन, ये जो बंगला दिख रहा है जुहू पे, ये शिपिंग कारपोरेशन वाली की मालकिन का बंगला है। महाराज कितने जहाज थे उसके, जब वो वहां जाती थी श्रीनाथ जी तो जहाज वाली रानी आ रही, जहाज वाली ने साफ मंदिर खाली वाली हो गया, उसके गेस्ट में जब दर्शन कर लेंगे तब हमारे जैसे छोटे मोटे आदमियों को प्रवेश नहीं। और आज तीसरी पीढ़ी में सब जय श्री कृष्ण है। हमको भी लगा के रे देख लो, देखते ही देखते जय श्री कृष्ण। अब फिर भी हम लोग जान रहे हैं फिर भी विश्वास नहीं होता है, ऐसा कभी सोचते ही नहीं कभी हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो खैर उनका ऐसा ही हुआ, तो उस परिस्थिति में उनका हुआ कि हम चाहे सब कुछ चला जाए लेकिन हम अपना कर्जा खत्म करेंगे, तो वो अपना मकान उन्होंने बेचने के लिए लगा दिया। मकान की प्रोसेस हो गई, सब कुछ हो गया, एडवांस एडवांस मेल मिला गया, और तब तक शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लग गई। अब सोचो उनकी क्या दशा हुई, उनका अब तो मैं मर जाऊंगा, मेरे से किसी कर्जा दिया नहीं जाएगा, मैं इसी घर में मैं भी जल के मर जाता हूं, ना मैं बचूंगा ना लेना देना बचेगा, और वो आग में कूदने लग गए। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उनके कमर में हाथ ऐसे डाल करके उनको खींचा, तब तक उनका बालक आया, पिताजी काहे को चिंता करो, इसकी तो रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री भैया। ओम शांति शांति शांति। वो फायर ब्रिगेड अभी उस अग्नि को शांत नहीं कर पाए, इनके हृदय में शांति हो गई। ओम शांति शांति। लेकिन शांति परमानेंट नहीं रही, तब तक उनका अकाउंटेंट आ गया, सर आपके दस्तखत पर, अरे ये क्या हुआ, क्यों सर आपके एक जगह दस्तखत रह गए थे इसलिए रजिस्ट्री नहीं हुई। अब ये बताओ ये हृदय की जलन किस कारण से हो रही है। हमारे लखनऊ के एक नवाब साहब थे, नवाब माने रिच थे, उनको कलकत्ते में घूम रहे थे और उनका नौकर पीछे पीछे आया और दौड़ते सर हुजूर हवेली में आग लग गई है, और वो चलते चले जा रहे मस्ती से, प्रसिद्ध घटना है, वो चले जा रहे। नौकर ने तीन बार कहा आलीजा हवेली में आग लग गई है, तो धीरे कहते तो मैं क्या करूं हुजूर हवेली, तो सच्ची बात है उनकी बात सही थी, अरे मैं क्या करूं यहां बैठा हूं कलकत्ते में और वहां आग लगी, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा आग हवेली में तो लगी गई, अब मैं अपनी चाल भी बिगाड़ दूं, वो उसी मस्ती में चलते रहे। अब बताओ किसको बेवकूफ कहोगे, उन मियां साहब को बेवकूफ कहोगे या उनको बेवकूफ कहोगे जो जलते हुए मकान में कूदने जा रहे थे। समझे, हमारी दशा यही है। हमने अतस्मिन तद बुद्धि कर ली है, हमको मालूम है कि कुछ रहने वाला नहीं है, लेकिन सबको मालूम है, ऐसा कोई नहीं है जिसको यह ना मालूम हो कि जब हम जाएंगे तो साढ़े तीन हाथ का कपड़ा मिलेगा बस। लेकिन अब वो रहन दो, क्या क्या करें, कैसे कैसे झगड़े होते हैं कि हमको इतने उनके पास इतने कैरेट के सॉलिटेयर्स हैं और मुझे शर्म आती है, मुझे इतने कैरेट के सॉलिटेयर ला कर दो, और नहीं तो फिर तो ठीक है, तो आप लोग सब पता क्या होता है ये। अब वो सॉलिटेयर हमको भी एक बार किसी ने हीरा दिया था एक अच्छा वो हम यहां वालों की बात नहीं बता रहे, यहां भी दिया था, हम वहां वालों की बात बता रहे। जब काशी में थे तो सूरत के एक सज्जन आए, हमको उन्होंने हीरा दिया एक बढ़िया, बहुत बड़ा नहीं था छोटा ही था। मैंने कहा क्या करूं, मैं रख लो, मैं रख लिया, जिस कागज की पुड़िया में डिबिया में वही रखा रहा बहुत दिनों तक। कि हमारा कोई काम ही ना आवे, ना उसकी चटनी बने, ना उसका अचार बने, किसी काम नहीं आवे, पड़ा रहा वैसे। और अब हमको अभी अभी अकल आई है, उस समय नहीं आई कि उसको बेच दिए होते तो काम बन जाता ना, वो हमारे अकल नहीं। अब अभी 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 गिरीश भाई को देख अकल आई, बनिया के साथ रहने में अकल आई, वो उसी दिव्या में पड़ा, आराम सोचा इसका करे तो क्या करे। एक सज्जन आया कर मारे हमको जो मैंने कहा ले जाओ छुट्टी करो, क्या उपयोग है 11 कैरेट के डायमंड की अंगूठी पहने हो कि 7 कैरेट की। 11 कैरेट की अंगूठी डायमंड मैंने देखा, मैंने डायमंड की अंगूठी मैंने देखी, चमकती है। उसके दाम सुन करके हमको पसीना आ गया। तो खैर हम ये सब हंसने हंसाने की बात इसलिए कह रहे हैं कि बस ये जो माया का वर्णन किया गया, ये पहले रस्सी बांधी गई, अब तुम्हारी रस्सी खुलेगी। तो वही पूछ रहे हैं कि अब तुम को हमने माया बता दी है, अब बताओ क्या सुनाऊं। तो वो कहते हैं यथाइता ऐश्वरी माया दुष्टराम दुष्टराम आत्म भी तरन चंजा स्थुलधियो महर्षिया इदम उच्यताम। महाराज आपने माया तो बता दी जो बड़ी दुष्टर है, अपनी ही बनाई हुई है, लेकिन हमारे जैसे स्थूल दिया जो समझदार लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, 30-30, 40-40 वर्ष के सत्संगी लोग, उनकी बात नहीं कह रहे, ये तो हमारे जैसे साधारण बुद्धि, स्थूल दियो माने मोटी बुद्धि। अब मोटी बुद्धि माने क्या है वो हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो इससे कैसे तरंती कैसे पार होएं वो बताओ। तो माया से तरने का उपाय हम लोग फिर भगवत कृपा से कल श्रवण करेंगे, और वो भी इंटेलिजेंट लोगों के लिए नहीं, हमारे जैसे मोटी बुद्धि वालों के लिए। श्री रमण बिहारी लाल की जय।